एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कौन सा सवाल?
यही कि भाई कैसे पता करें कि कोई एक चीज सच में किसी दूसरी चीज का कारण बन रही है या वो दोनों बस यूं ही साथ साथ हो रही हैं। मतलब कॉजेशन और कोरिलेशन का चक्कर।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है ना, ये तो रोज की जिंदगी में सामने आता है।
सही कहा।
और इसी उलझन को सुलझाने में हम आज पॉल आर रोजनबाम के काम को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी किताबें हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ये इस फील्ड में बहुत अहम मानी जाती हैं।
हाँ, और आज ये इतना जरूरी क्यों है जरा सोचिए। हमें रोज सुनने को मिलता है ये वाला सुपरफूड खाइए उम्र बढ़ जाएगी, या फलां सरकारी पॉलिसी आई तो अर्थव्यवस्था सुधर गई, कोई ऐप इस्तेमाल किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दावे ही दावे हैं।
लेकिन क्या ये सच है? कितना दम है इनमें,
बिल्कुल।
खासकर तब जब हम वो लैब वाले परफेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या आरसीडी। असल दुनिया तो मेसी है ना,
हाँ
सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता।
हाँ वहीं पर रोजनबाम का काम एक रास्ता दिखाता है।
अच्छा,
वो बताते हैं कि कैसे बिना एक्सपेरिमेंट वाले डेटा से भी, मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से, हम सावधानी से कारण और असर के बारे में सोच सकते
हाँ,
हैं।
और आज के ज़माने में तो ये और भी ज़रूरी है। बिग डेटा का दौर है, जानकारी इतनी है पर उसमें से सही मतलब निकालना वो एक कला है।
सही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं आज।
ज़रूर। तो सबसे पहले ये पॉल रोजनबाम है कौन, थोड़ा इनके बारे में बताइए।
देखिए, पॉल रोजनबाम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, रॉबर्ट जे पुट्ज़ेल प्रोफेसर। लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है,
अच्छा,
उन्हें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से कारण कार्य संबंध निकालने के जो तरीके हैं उनके संस्थापकों में गिना जाता है। मतलब पायनियर है वो इस फील्ड के।
वाह, तो उनकी खास बात क्या है, मतलब किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं?
देखिए, दो तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली तो यही कि वो इस फील्ड के शुरुआती विकास करने वालों में से हैं। डोनाल्ड रूबिन के साथ मिलकर उन्होंने 1983 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोपेंसिटी स्कोर।
प्रोपेंसिटी स्कोर, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, कहते हैं इसने पूरा नजरिया बदल दिया था।
बिल्कुल, इसने क्रांति ला दी थी कि हम कैसे बिना एक्सपेरिमेंट वाले डेटा को एनालाइज करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज,
हाँ,
उन्होंने संवेदनशीलता विश्लेषण
यानी सेंसिटिविटी एनालिसिस,
के फॉर्मल तरीके विकसित किए। ये बहुत जरूरी चीज है।
संवेदनशीलता विश्लेषण, ये क्या होता है?
तो वो हमारे नतीजों पर कितना असर डाल सकता है, मतलब हमारे निष्कर्ष कितने भरोसेमंद हैं, कितने मजबूत हैं।
अच्छा, ये तो वाकई जरूरी लगता है, और कोई खास बात?
हाँ, एक और चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो है उनका जोर अध्ययन के डिजाइन पर।
डिजाइन पर, एनालिसिस से ज्यादा?
हाँ, वो बार बार कहते हैं कि आप डेटा आने के बाद उसमें क्या गणित लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने तुलना करने वाले समूह पहले कैसे बनाए। ये डिजाइन फर्स्ट एनालिसिस बाद में वाली सोच, ये उनकी पहचान है।
ये तो सोचने का एक अलग ही तरीका है, मतलब सिर्फ नियमों की बात नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है।
बिल्कुल, वो इस विषय के सिर्फ जानकार नहीं बल्कि इसके मुख्य आर्किटेक्ट्स में से एक हैं, आप कह सकती हैं।
तो फिर इनकी किताबें किस बारे में हैं, अगर आम भाषा में समझना हो?
सीधी सी बात है, ये किताबें एक तरह की गाइड हैं। ये सिखाती हैं कि जब आप लोगों को रैंडमली दो ग्रुप में नहीं बांट सकते, जैसे एक को दवाई दी दूसरे को नहीं, तब भी आप कारण और प्रभाव के रिश्ते को कैसे समझ सकते हैं।
मतलब असल दुनिया के डेटा से कारण ढूंढना।
हाँ, और उनका जो मूल तर्क है वो बड़ा सीधा लेकिन गहरा है। वो मानते हैं कि हाँ, आरसीटी यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल वो बेस्ट तरीका है, गोल्ड स्टैंडर्ड है।
हाँ, वो तो है।
लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से डिजाइन करें, इतना कि वो एक एक्सपेरिमेंट की नकल करे, तो हम काफी भरोसेमंद नतीजे निकाल सकते हैं।
अच्छा, मतलब एक्सपेरिमेंट ना कर पाने की कमी को डिजाइन से पूरा करने की कोशिश।
बिल्कुल, ये किताबें हमें उस सबसे बड़ी मुश्किल से निपटना सिखाती हैं जिसे कन्फाउंडिंग कहते हैं या सिलेक्शन बायस भी कहते हैं।
कन्फाउंडिंग, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी?
हाँ, देखिए, मान लीजिए हम दो ग्रुप्स की तुलना कर रहे हैं, जैसे जो लोग रोज सुबह दौड़ने जाते हैं और जो नहीं जाते। अब हो सकता है उनकी सेहत में फर्क हो, पर क्या ये फर्क सिर्फ दौड़ने की वजह से है?
हो सकता है दौड़ने वाले लोग वैसे भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हों, अच्छा खाते हों, स्मोकिंग ना करते हों।
एग्जैक्टली, वो सिर्फ दौड़ने या ना दौड़ने में अलग नहीं है, वो शायद उम्र, खान पान, लाइफ स्टाइल, पहले की बीमारियां, कई चीजों में अलग हो सकते हैं। ये सारे दूसरे फर्क हमारे नतीजों को गड़बड़ा सकते हैं। इसी को कन्फाउंडिंग कहते हैं।
समझ गया। और रोजनबाम की किताबें इसी से निपटना सिखाती हैं।
हाँ, और इसके लिए वो दो मुख्य औजार देते हैं। पहला वही प्रोपेंसिटी स्कोर।
अच्छा।
इससे हम लोगों की जानी पहचानी विशेषताओं के आधार पर ऐसे तुलनात्मक समूह बना सकते हैं जो काफी मिलते जुलते हों।
और दूसरा?
दूसरा है संवेदनशीलता विश्लेषण। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो फर्क हम देख नहीं पाए, माप नहीं पाए, उनका हमारे नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है।
यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं, है ना? मुझे लगता है इन आइडियाज को थोड़ा और गहराई से समझना चाहिए।
हाँ जरूर। चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे सब आइडियल मानते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, RCT।
हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड। ये इतना अच्छा क्यों माना जाता है?
क्योंकि इसमें हम लोगों को पूरी तरह से रैंडमली, मतलब बिना किसी पैटर्न के, जैसे सिक्का उछालकर दो ग्रुप्स में बांटते हैं। एक ट्रीटमेंट ग्रुप जिन्हें इलाज मिलेगा और एक कंट्रोल ग्रुप जिन्हें नहीं मिलेगा।
ठीक है।
अब क्योंकि ये बंटवारा पूरी तरह रैंडम है तो औसतन शुरू में ये दोनों ग्रुप्स हर तरह से एक जैसे होते हैं। न सिर्फ उन चीजों में जिन्हें हम देख सकते हैं जैसे उम्र या लिंग, बल्कि उन चीजों में भी जिन्हें हम नहीं देख सकते जैसे जेनेटिक्स या मोटिवेशन। रैंडमाइजेशन जादू की तरह सब कुछ बैलेंस कर देता है।
अच्छा, ये संतुलन ही इसकी असली ताकत है।
बिल्कुल। और यहीं पर संभावित परिणाम या पोटेंशियल आउटकम्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है।
नतीजा क्या होता अगर उसे ट्रीटमेंट मिलता, इसे Y1 कहते हैं, और उसका नतीजा क्या होता अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसे Y0 कहते हैं।
काल्पनिक स्थितियां।
हाँ, असल जिंदगी में हम एक ही इंसान के लिए ये दोनों नतीजे कभी नहीं देख सकते। आप या तो दवा लेंगे या नहीं लेंगे, दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। इसे कारण कार्य अनुमान की मौलिक समस्या, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कॉजल इन्फरेंस कहते हैं।
हाँ, ये तो है। एक ही व्यक्ति पर दोनों प्रयोग नहीं हो सकते।
सही। लेकिन RCT इस समस्या का हल ग्रुप लेवल पर निकालता है, क्योंकि रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल ग्रुप लगभग वैसा ही होता है जैसा ट्रीटमेंट ग्रुप होता अगर उन्हें ट्रीटमेंट ना मिला होता। तो कंट्रोल ग्रुप एक तरह का बेंचमार्क बन जाता है।
अच्छा, तो RCT हमें बताता है कि क्या होता अगर।
हाँ।
बहुत बढ़िया समझाया। अब आते हैं असल दुनिया की मुश्किलों पर, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज।
लोग खुद चुनते हैं क्या करना है, कौन सा डाइट लेना है। हाँ। कौन सी दवा लेनी है, या डॉक्टर उनकी स्थिति देख कर देता है। हाँ। यही वो कन्फाउंडिंग वाली समस्या आ जाती है।
जैसे वो विटामिन सप्लीमेंट वाला उदाहरण।
हाँ, जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं और जो नहीं लेते। हो सकता है लेने वाले वैसे भी ज्यादा सेहत का ध्यान रखते हो, अच्छा खाते हो, कसरत करते हो, तो अगर वो ज्यादा स्वस्थ है तो क्या ये सिर्फ सप्लीमेंट का असर है या उनकी पूरी लाइफस्टाइल का, ये पता लगाना मुश्किल है।
और यही रोजनबाम का वो आइडिया आता है जो थोड़ा अलग है।
कौन सा?
कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह डिजाइन करो, और ये डिजाइन वाला काम नतीजे देखने से पहले करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो सोचते हैं कि डेटा ले आओ फिर स्टैटिस्टिक्स लगा देंगे।
हाँ, ये उनका बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। हाँ। वो कहते हैं कि बाद में गणित लगाकर चीजें ठीक करने से कहीं बेहतर है कि शुरुआत में ही तुलना करने लायक ग्रुप बनाने पर मेहनत की जाए, डिजाइन पर फोकस करो।
अब प्रोपेंसिटी स्कोर आते हैं।
बिल्कुल, प्रोपेंसिटी स्कोर इसका मुख्य हथियार है। अब ये है क्या?
हाँ बताइए जरा।
देखिए, ये हर व्यक्ति के लिए कैलकुलेट किया गया एक नंबर होता है, 0 और 1 के बीच का एक स्कोर। ये स्कोर ये बताता है कि उस व्यक्ति के उसकी जानी हुई विशेषताओं जैसे उम्र, लिंग, शिक्षा, पिछली बीमारी आदि को देखते हुए ट्रीटमेंट ग्रुप में होने की कितनी संभावना थी।
अच्छा, ट्रीटमेंट मिलने की संभावना का स्कोर। पर ये कन्फाउंडिंग में कैसे मदद करता है?
यही तो इसकी खूबी है। इस एक स्कोर का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को मैच कर सकते हैं जिनका प्रोपेंसिटी स्कोर लगभग बराबर है, लेकिन उनमें से एक ने ट्रीटमेंट लिया और दूसरे ने नहीं।
मैच कर सकते हैं, मतलब जोड़े बना सकते हैं।
हाँ, जोड़े बना सकते हैं, या फिर समान स्कोर वाले लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं।
स्ट्रेटिफिकेशन।
ऐसा करने से क्या होता है, हम एक साथ दर्जनों विशेषताओं को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हम सांख्यिकीय रूप से जुड़वां ढूंढ रहे हैं। दो लोग जो ट्रीटमेंट लेने की संभावना में बहुत समान थे, बस किस्मत से एक को मिला दूसरे को नहीं।
वाह, ये तो कमाल का आइडिया है, दर्जनों वेरिएबल्स को एक स्कोर से संभालना।
हाँ,
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, रोजनबाम इस पर बहुत जोर देते हैं।
क्या?
सिर्फ स्कोर बना लेना या मैचिंग कर लेना ही काफी नहीं है, आपको बाकायदा ये चेक करना होगा कि मैचिंग के बाद आपके ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप उन विशेषताओं पर सच में बैलेंस हुए हैं या नहीं जिन पर आपने मैचिंग की थी। इसे बैलेंस चेकिंग कहते हैं।
अच्छा, मतलब क्रॉस चेक करना जरूरी है कि डिजाइन काम कर रहा है या नहीं।
बिल्कुल, ये डिजाइन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है।
ठीक है, तो प्रोपेंसिटी स्कोर से हमने उन फर्कों को संभाल लिया जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, पर वो एक सवाल तो फिर भी रहता है, उन अनदेखी चीजों का क्या, छुपा हुआ बायस जिसका हमें पता ही नहीं। ये तो ऑब्जर्वेशन स्टडी की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है।
हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है और रोजनबाम के पास इसका भी जवाब है। यही उनका दूसरा बड़ा टूल काम आता है, संवेदनशीलता विश्लेषण,
सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये कैसे काम करता है?
देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। ये सीधे सीधे ये नहीं बताता कि छुपा हुआ बायस है या नहीं, वो तो हम जान ही नहीं सकते क्योंकि वो छुपा हुआ है।
तो फिर
ये एक क्या होता अगर वाला सवाल पूछता है। ये कहता है, मान लीजिए हमारा जो नतीजा आया है, जैसे ट्रीटमेंट का इतना असर है, वो सच है, तो एक अनदेखे कन्फाउंडर को कितना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा कि वो इस नतीजे को पूरी तरह से गलत साबित कर दे।
ओह, अच्छा।
तो ये नहीं कहता कि बायस है, बल्कि ये पूछता है कि बायस को कितना बड़ा होना पड़ेगा हमारे नतीजे को पलटने के लिए।
एग्जैक्टली, ये हमारी नतीजे की मजबूती को टेस्ट करता है। इसके लिए रोजनबाम एक पैरामीटर यूज करते हैं, ग्रीक लेटर गामा।
गामा?
हाँ, गामा। गामा इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कोई छुपा हुआ बायस नहीं है, जैसे आरसीटी में होता है। गामा इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि कोई अनदेखा फैक्टर दो ऐसे लोगों में जो बाकी सब चीजों में एक जैसे हैं, उनमें से एक के ट्रीटमेंट लेने की संभावना को दोगुना कर सकता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये देखता है कि जैसे जैसे हम गामा की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ताकतवर छुपे हुए बायस की कल्पना करते हैं, हमारे नतीजे जैसे पी वैल्यू कब तक टिके रहते हैं। क्या वो गामा इज इक्वल्स टू 1.5 पर ही बदल जाते हैं या गामा इज इक्वल्स टू 2, 3 या 4 तक भी मजबूत रहते हैं।
समझ गया, ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है हमारे निष्कर्षों के लिए। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है?
हाँ, बहुत ही क्लासिक उदाहरण है स्मोकिंग और लंग कैंसर का।
अच्छा, 1950 के दशक में जब ये बात सामने आ रही थी कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, आर.ए. फिशर।
हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में।
उन्होंने तर्क दिया कि हो सकता है कोई जेनेटिक फैक्टर हो, मतलब कोई जीन जो लोगों को स्मोकिंग करने के लिए भी उकसाता है और उन्हें कैंसर होने का खतरा भी बढ़ाता है। ये एक क्लासिक छुपा हुआ कन्फाउंडर वाला आर्ग्यूमेंट था।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल था। अगर ऐसा होता तो स्मोकिंग कारण नहीं होती।
बिल्कुल, लेकिन फिर एक और स्टैटिस्टिशियन आए, जेरोम कॉर्नफील्ड। उन्होंने सेंसिटिविटी एनालिसिस का ही एक शुरुआती रूप इस्तेमाल किया और उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि फिशर के इस काल्पनिक जेनेटिक फैक्टर को स्मोकिंग और कैंसर के बीच जो संबंध दिख रहा था, उसे पूरी तरह समझाने के लिए इतना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा जो कि उस समय ज्ञात किसी भी रिस्क फैक्टर से कहीं ज्यादा था।
अरे वाह।
इसने फिशर के तर्क को पूरी तरह खारिज नहीं किया, पर उसे बहुत ज्यादा असंभाव्य बना दिया। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस की ताकत दिखाता है।
कमाल है। तो इन सब बातों से हम क्या मुख्य संदेश निकाल सकते हैं, निचोड़ क्या है?
मुझे लगता है पहला और सबसे अहम सबक ये है कि कारण कार्य का पता लगाना, ये असल में एक डिजाइन की समस्या है। एनालिसिस बाद में आता है, पहले डिजाइन। डेटा जमा करने से पहले आप ग्रुप्स को तुलनीय बनाने के लिए क्या करते हैं, असली मेहनत वही है।
हाँ, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, डिजाइन फर्स्ट। दूसरा क्या कहेंगे?
दूसरा इसी से जुड़ा है, प्रयोगों की नकल करने की कोशिश करें। जहां आप असली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहां अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडी को जितना हो सके उतना एक अच्छे एक्सपेरिमेंट जैसा बनाने की कोशिश करें। लक्ष्य वही है, निष्पक्ष तुलना।
और तीसरा?
तीसरा है पारदर्शिता और ईमानदारी। साफ साफ बताएं कि आपने किन चीजों को मापा और कंट्रोल किया, ओवर्ट बायस, और साथ ही सेंसिटिविटी एनालिसिस का इस्तेमाल करके ये भी स्वीकार करें कि अनदेखे कारक, हिडन बायस हो सकते हैं और आपके नतीजे उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं। अपनी स्टडी की सीमाओं को मानना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। चौथा,
ये याद रखना कि ये सब सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तर्क बनाने का काम है। स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ औजार है, आपको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, लॉजिक लगाना होगा। एक स्टडी से सब साबित नहीं होता। विश्वास तब बनता है जब अलग अलग स्टडीज अलग अलग तरीकों से एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं।
और वो बिग डेटा वाली बात?
हाँ, बिग डेटा के जमाने में ये और भी जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बायस फ्री है। बड़ा डेटा बड़े बायस को और मजबूती से दिखा सकता है। साइज सब कुछ नहीं है।
बिल्कुल सही। क्या रोजेनबॉम के काम से कुछ ऐसी पंक्तियां या छोटे विचार हैं जो याद रखने लायक हों?
हाँ, कुछ बातें उनके काम का सार हैं। जैसे पहला, ऑब्जर्वेशनल स्टडी का लक्ष्य एक रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट के डिजाइन की नकल करना है। ये डिजाइन फर्स्ट वाली बात को पुख्ता करता है।
बिल्कुल।
और
दूसरा, सेंसिटिविटी एनालिसिस ये नहीं बताता कि छुपा हुआ बायस है या नहीं, बल्कि ये बताता है कि निष्कर्ष बदलने के लिए उसे कितना बड़ा होना पड़ेगा। ये नतीजे की मजबूती और हमारे अपनी समझ की सीमा दोनों बताता है।
ये विनम्रता सिखाता है। और कोई?
तीसरा, जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है, हम देखे गए फैक्टर्स पर बैलेंस को चेक कर सकते हैं। कारण कार्य के दावे अनदेखे फैक्टर्स के बारे में अनचेक्ड धारणाओं पर टिके होते हैं। इसलिए जो हिस्सा हम चेक कर सकते हैं, यानी बैलेंस, उसे जितना हो सके उतना अच्छा करें। मतलब अपनी मेहनत वहां लगाएं जहां आप वाकई कुछ बदल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं।
बहुत खूब, ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या काम? हम इन्हें कहां देख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे हर जगह। आप रोज अखबार में या ऑनलाइन हेल्थ न्यूज पढ़ती होंगी, कॉफी पीने वाले ज्यादा जीते हैं, चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है।
हाँ, रोज ही आते हैं ऐसे दावे।
अब आप पूछ सकती हैं, क्या ये तुलना सही लोगों के बीच हुई? क्या कॉफी पीने वाले और न पीने वाले सिर्फ कॉफी में ही अलग थे, या उम्र, लाइफस्टाइल, खानपान में भी? क्या किसी तरह की मैचिंग की गई? ये हमें ऐसे दावों पर सवाल उठाना सिखाता है।
हाँ, ये तो है, और बिजनेस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।
क्यों नहीं? मान लीजिए कोई कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर लाती है, जिन टीमों ने उसे इस्तेमाल किया उनकी सेल्स बढ़ गई। अब सवाल है, क्या ये सॉफ्टवेयर का असर है, या वही टीमें सॉफ्टवेयर जल्दी अपनाती हैं जो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड थी, यानी सिलेक्शन बायस?
तो यहाँ भी प्रोपेंस स्टडी स्कोर मैचिंग काम आ सकती है। उन टीमों की तुलना करें जिनका पिछला रिकॉर्ड एक जैसा था।
बिल्कुल, इससे कंपनियां समझ सकती हैं कि उनके निवेश का असली रिटर्न क्या है।
और सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में वहां तो ये बहुत ही जरूरी होगा।
हाँ, निश्चित रूप से। सरकार ने बच्चों के लिए कोई नया ट्यूशन प्रोग्राम शुरू किया, जिन बच्चों ने हिस्सा लिया उनके नंबर बढ़ गए। क्या ये प्रोग्राम का असर है, या सिर्फ वही बच्चे और पेरेंट्स प्रोग्राम में आए जो पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर थे?
यहाँ भी एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए जो मैच किया गया हो।
सही, बिना इसके ये जानना मुश्किल है कि पॉलिसी कितनी कारगर है।
तो असल में ये सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग चेकलिस्ट है।
बिल्कुल, जब भी कोई कहे ए करने से बी होता है, तो रुक कर सोचें,
क्या ये एक्सपेरिमेंट था या सिर्फ ऑब्जर्वेशन?
तुलना वाले ग्रुप शुरू में कितने अलग थे,
उन अंतरों को कैसे संभाला गया, मैचिंग, एडजस्टमेंट,
और उन अनदेखे फैक्टर्स का क्या जिनकी बातें नहीं हुई उनके बारे में सोचा गया, सेंसिटिविटी एनालिसिस हुआ?
हाँ, ये सवाल पूछने से हम जानकारी के अंबार में बेहतर तरीके से रास्ता खोज सकते हैं।
सही कहा।
तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि भले ही असल दुनिया का डेटा परफेक्ट ना हो, थोड़ा मैसी हो, फिर भी हम कठोरता और ईमानदारी से कारण और असर के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है।
हाँ,
ये सब कुछ निर्भर करता है स्मार्ट डिजाइन पर और अपनी स्टडी की सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार करने पर। वो जो नतीजे देखने से पहले डिजाइन करो वाला आइडिया है, वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। वो जल्दबाजी के निष्कर्षों से बचाता है।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा असरदार लगी वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये उस मुश्किल सवाल से, उस शक से कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, उससे निपटने का एक व्यवस्थित तरीका है।
हाँ, वो व्हाट इफ वाला सवाल।
हाँ, ये उस अनिश्चितता को, उस डर को एक ठोस सवाल में बदल देता है जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा नतीजा कितना मजबूत है, जरा सी हवा से गिर जाएगा या आंधी में भी खड़ा रहेगा, ये हमें बौद्धिक रूप से ईमानदार बनाता है।
बिल्कुल।
और ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है कि हम अपनी ज्ञान की सीमाओं को कितना समझते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते, ये सोचना जरूरी है।
बहुत गहरी बात कही आपने। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।